रंग बिरंगी दुनिया सारी, भात भात के लोग मिलके बिछड़ना, बिछड़ के मिलना सारा है संजोग।
कठिन है राह मगर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है ये जानता हूँ, मगर थोड़ी दूर साथ चलो।
दोस्तों, न चाहते हुए भी आज हम उस मकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ हमें आप लोगों का साथ छोड़ना होगा।
और प्रोग्राम की इस आखिरी कड़ी में हमेशा की तरह हाजिर हैं आपके अपने दोस्त नरेन तिवारी
और अंजलि जोशी।
अंजलि, जब चले शहर की ओर का सफर कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला।
हाँ नरेन, जहाँ मुझे अपने श्रोताओं से बिछड़ने का दुख है, वहीं मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमने इस प्रोग्राम के जरिए अपने प्रवासी दोस्तों का प्रवास का सफर जरूर आसान बनाया होगा।
बिल्कुल अंजलि, और दोस्तों इस प्रोग्राम के जरिए न केवल हमारी कोशिश रही आपके प्रवास के सफर को आसान बनाने की, बल्कि हमारा प्रयास रहा आपके संदेश आपके अपनों तक पहुंचाने का।
और नरेन, हमारे श्रोताओं को चलें शहर की ओर धारावाहिक बहुत पसंद आया।
अंजलि, हमारे श्रोताओं को ये धारावाहिक इसलिए पसंद आया क्योंकि इसके किरदार कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं को अपने जीवन से मिलते जुलते नजर आते हैं।
हाय दुनिया, ये दुनिया बड़ी गोल है।
हम इस बारे में अपने प्रोग्राम में और बात करेंगे, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम क्योंकि हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा आखिरी और रिकैप एपिसोड है,
और इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे धारावाहिक चले शहर की ओर की कहानी शुरू से अंत तक।
तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और हम सब मिलकर सुनते हैं धारावाहिक चले शहर की ओर।
दोस्तों, प्रवास के खट्टे मीठे अनुभवों से भरी ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से, जहां चंदर अपनी माँ, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ रहता है। बड़ा भाई शादीशुदा है और अब घर में छोटे भाई चंदर की शादी की तैयारी चल रही है।
अरे भाई, अरसे की थाली किधर है?
वो रही अरसे की थाली, बौजी ला रही है।
माँ जी, ये रही अरसे की थाली।
ला बारी, इधर ला, और तू जा बाकी का काम दे, बहुत काम पड़ा है अभी।
जी माँ जी।
और हाँ सुन, आज प्रसाद थोड़ा ज्यादा बना लेना, शाम तक और भी न्यूते आने वाले हैं।
अच्छा माँ जी।
जहाँ एक तरफ चंदर के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ चंदर की होने वाली पत्नी मधु अभी शादी नहीं करना चाहती। वो आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है।
पुष्पा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तुझे तो पता है ना मेरा पढ़ाई में कितना मन है, लेकिन शादी के बाद तो मैं पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकती।
देख मधु, हर माँ बाप को लगता है कि उनकी बेटी उनकी जिम्मेदारी है, जिसे वो उसकी शादी करके जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहते हैं। और तू तो फिर भी खुशकिस्मत है, तेरे माँ बाप ने तुझे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव तक तो भेज दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे आगे पढ़ाने के बारे में सोचा तक नहीं।
अच्छा पुष्पा, अगर मैं शादी कर लूँ और अपने पति से शादी की रात को ही उसे आगे की पढ़ने की बात कर डालूँ तो?
तुझे क्या लगता है कि वो मान जाएगा?
क्या पता मान जाए।
देख ले, शादी तो करनी ही है, और अगर तेरा पति तेरी पढ़ाई के लिए मान जाता है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है।
नरेन, हमने अपने श्रोताओं को कविता के बारे में तो बताया ही नहीं।
सब्र अंजलि, सब्र। दोस्तों, एक तरफ मधु है जो अपने परिवार वालों के दबाव में आकर चंदर से शादी कर रही है, और दूसरी तरफ कविता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से मुंबई भाग जाती है और अब गांव में अपने माता पिता से बात करने की नाकाम कोशिश करती है।
हेलो 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 हेलो,
कविता?
शायद अपनी कविता थी।
कौन? कविता? मर चुकी है वो हमारे लिए और इस घर के लिए। जिस दिन वो इस घर की दहलीज को पार कर शहर भागी थी।
देखिए देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा।
अरे बढ़ जाने दो बीपी, मर तो हम वैसे ही चुके हैं। हम उसके लिए और वो हमारे लिए जीते जी जिंदा मार गई हमें, मार गई हमको सुमित्रा, मार गई हमको।
नरेन, गांव तो हमारा चंदर भी छोड़ना चाहता है, लेकिन मन ही मन डरता है कि शादी के तुरंत बाद शहर जाकर काम करने की बात से कहीं मधु बुरा ना मान जाए। लेकिन गांव में कमाई का कोई साधन न होने के कारण आखिरकार चंदर अपने दोस्त उमेश के साथ दिल्ली आ ही जाता है।
दिल्ली आ गई, उतरो 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 उतरो।
उमेश, ए उमेश। अरे भाई उठ जा, दिल्ली आ गई।
आ गई दिल्ली?
हाँ।
चल ले सामान पकड़।
चल भाई, कहीं चलकर हाथ मुंह धो ले।
अरे यहाँ बस अड्डे में कहाँ जाएगा, सब बहुत गंदा होगा। कल्पना के यहाँ जाकर नहा लेना।
अच्छा चल, तो फिर ठीक है।
दोस्तों, चंदर तो चला गया शहर पैसे कमाने और पीछे छोड़ गया अपना परिवार। चंदर का बड़ा भाई हरिंदर किसी काम का नहीं है। उससे या तो ताश की बाजियां लगवा लो या फिर बिठाकर जितनी चाहे बोतलें खुलवा लो, लेकिन अगर उससे काम की बात करें तो नतीजा कुछ ऐसा होता है।
पागल हो गए हो क्या? भगवान के लिए बस करो।
बस करूं? क्यों बस करूं भाई? तुम्हारे पैसों की पीता हूं, तुम्हारे बाप के पैसों की पीता हूं। तुम होती कौन है मुझे टोकने वाली?
मैं पत्नी हूं तुम्हारी।
तो क्या करूं फिर, तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारे पैर पड़ूं? लाओ जय हो पत्नी जी की।
इस पीने के चक्कर में सारे घर का माहौल खराब हो रहा है। दो दिन यहाँ खुशी के नहीं मिल सकते।
मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? मैं तेरी तो
भगवान ऐसे जीने से तो उठा ही ले।
दोस्तों, हरिंदर जहाँ अपनी जिंदगी को नशे में बर्बाद कर रहा है, वहीं दूर मुंबई में कविता हर पल अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, जिसे राजेश के रूप में एक अच्छा दोस्त मिलता है और शुरुआत होती है एक नई दोस्ती की।
अरे राजेश, तुम यहाँ, तुम कब आए?
जब आप समंदर के साथ बातें कर रही थी। ये लो भेलपुरी।
ओह थैंक्स, भेलपुरी मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम यहाँ कैसे?
मैं तो यहीं पास में रहता हूँ और रोज यहाँ समुद्र के किनारे टहलने के लिए आता हूँ। तो ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे?
बस ऐसे ही, कहीं अकेले जाकर बैठने का दिल कर रहा था तो यहाँ आ गई।
वैसे ये जगह अकेले आने वालों के लिए नहीं है मैडम। आओ थोड़ा टहल लेते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा है। चलो उठो उठो भाई।
चलो।
अंजलि, जहाँ कविता को राजेश के रूप में एक भरोसेमंद दोस्त मिलता है, वहीं चंदर का दोस्त उमेश चंदर को अपने दोस्त की भाभी के घर अकेला छोड़ जाता है। एक नए आशियाने की तलाश में चंदर की मुलाकात होती है गजेंद्र से।
अरे क्या हुआ भैया, शाम से बैठे हो यहाँ? भैया अब तो ढाबा भी बंद होने वाला है।
जी वो मैं भटक गया था, यहाँ पूछने की कोशिश की तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अब बस थोड़ा थक गया हूँ।
दिल्ली में नहीं हो क्या?
जी जी हाँ, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। नौकरी की तलाश में गढ़वाल से आया हूँ।
अच्छा, उत्तराखंड के हो? अरे भाई मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, लेकिन मैं कुमाऊनी हूँ।
अच्छा।
अच्छा कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, वो दरअसल रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे बदरपुर जाना था लेकिन गलत बस में चढ़ गया, उसने मुझे यहाँ उतार दिया। अब मुझे रास्ता भी नहीं पता।
अच्छा आप कहाँ जाओगे?
जी।
अरे भाई मेरा मतलब है, रात को कहाँ रुकोगे?
जी अभी तो नहीं पता।
नौकरी भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। हाँ, तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी की कहानी याद आ रही है। अच्छा एक काम करो, अभी फिलहाल कुछ खा लो, फिर तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ कहीं।
अरे नहीं नहीं, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए।
अरे भैया इसमें परेशानी कैसी है? और वैसे भी अगर इस प्रदेश में मैं तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर लानत है भाई, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। अच्छा देखो अभी बस पराठे बचे हैं, हैं? वो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। और सुनो भैया, इस अनजान शहर में मुझे अपना दोस्त समझो।
जी ठीक है।
चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।
नरेन दोस्त हो तो ऐसा जो दोस्ती को पूरे दिल से निभाए, फिर चाहे वो गजेंद्र हो या राजेश।
मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
राजेश ने न केवल एक अच्छा दोस्त बनकर कविता का कदम कदम पर साथ दिया, बल्कि कविता की जिंदगी के सफर में उसका हम सफर भी बना।
अरे कविता, तुम्हारे हंसने के चक्कर में कॉफी ठंडी हो जाएगी।
राजेश, उस सीन के बारे में सोच सोच कर मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। एक लड़की की शादी कुत्ते के साथ।
कुत्ता नहीं, कुकुर। कविता, मुझे तुमसे एक बात करनी है।
हाँ बोलो, क्या बात है?
पहले कहो कि तुम बुरा नहीं मानोगे।
ओ राजेश, अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
इसका मतलब तुम्हें मालूम था?
राजेश, तुम्हारा मुझसे बातें करना, घंटों मेरे साथ वक्त बिताना, बाइक खराब होने का बहाना करके मेरे साथ ट्रेन में आना, मेरा इतना ख्याल रखना, ये सब तुम्हारा मेरे लिए प्यार नहीं तो और क्या है?
तो तुम्हें सब कुछ मालूम था और अब तक मेरी खिंचाई की जा रही थी।
हाँ कह सकते हो।
देखते ही देखते दिल खो गया।
दोस्तों, जहां कविता अपनी मंजिल के करीब पहुंचती जा रही है, वहीं गांव में मीरा हरिंदर की पीने की आदत से काफी परेशान है और रात दिन नशे में रहने के कारण हरिंदर बीमार पड़ जाता है।
माँ, कहाँ रह गए मीरा? जल्दी आओ, कहाँ रह गए सब?
क्या हुआ, आप ऐसे क्यों करा रहे हैं?
मीरा, मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है।
हे भगवान, फिर वही पेट दर्द, बहुत जोर से दर्द हो रहा है क्या?
हाँ भाई, तू माँ को बुला ला, वही दवा दे देगी।
मैं भी बुलाती हूँ।
माँ जी, माँ जी।
क्या हुआ बारी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है?
माँ जी, उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है।
पेट दर्द? तंग आ गई हूँ मैं इसके पेट दर्द से। काम धाम तो कुछ करता नहीं, रोज एक नया नाटक।
माँ जी, वो किसी दवा के लिए बोल रहे थे, वो दे दीजिए।
अच्छा तू चल, मैं भी लाती हूँ। इस बुढ़ापे में सेवा मेरी होनी चाहिए तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ रही है।
नरेन चंदर के घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। हरिंदर रात दिन नशे में रहता है। उधर दिल्ली में चंदर को नौकरी मिल तो गई, लेकिन किस्मत भी हर किसी का साथ नहीं देती। एक छोटी सी गलती पर चंदर का मालिक चंदर को नौकरी से निकाल देता है।
नालायक, सारा खाना मेरे ऊपर गिरा दिया। कथा कहीं का, सारे कपड़े खराब कर दिए।
गलती हो गई मालिक, गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देता हूँ।
गलती हो गई, अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा?
मालिक हम साफ कर तो रहे हैं, आप हमारे पिताजी के बारे में ऐसा मत कहिए।
साले जबान लगाता है मुझसे, ये ले, ये ले।
तूने मेरे पे हाथ कैसे उठाया? मेरे पे हाथ उठाता है तेरी तो, मैं बताता हूँ तुझे।
अरे तू, मैं, अरे गिरबान पर हाथ लगाता है,
तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं।
साले दो कौड़ी,
मेरे पिताजी को मालिक है तूने।
अरे
मैं बताता हूँ।
अरे चंदर छोड़, छोड़, छोड़। अरे चंदर मालिक का गिरबान छोड़। अरे मालिक आप छोड़ दीजिए।
अरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, निकल जा यहाँ से।
हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना, मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी चला जाऊंगा।
हिसाब चाहिए तुझे, ये ले।
ये क्या, सिर्फ 100 रुपए?
और तू क्या चाहता है, ये ढाबा तेरे नाम कर दूं? इसे उठा और निकल ले।
मुझे भीख नहीं चाहिए, ये ले, जा रहा हूँ मैं। लेकिन ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
अबे जा यहाँ से, बड़ा आया राजा का बेटा बनने वाला।
अरे चंदर, अरे चंदर रुक तो।
गजेंद्र तू यहीं रुक, नहीं तो तेरा भी हिसाब कर दूंगा। 100 रुपए मेरे फेंके हैं उसने,
अरे भूखा मर जाएगा भूखा।
दोस्तों, जहां चंदर की नौकरी चली जाती है, वहीं गांव में मधु सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ रही है।
16, 17, 18, 19 और ये हो गई पूरी 20 बोतलें।
बौजी, ये क्या कर रही हो?
छुटकी, हमारा जूस का पहला ऑर्डर पूरा हो गया।
सच बौजी?
हाँ।
तो अब घर में पैसे आएंगे।
वो तो है।
मस्त मस्त घर मस्तम, घर बिंद बिंद घर मस्तम, अस्त हस्त घर मस्तम, घर मस्तम।
नरेन गांव में मधु की जिंदगी में संघर्ष शुरू हो चुका है और उधर मुंबई में कविता की संघर्ष पूर्ण जिंदगी थमने लगी है। राजेश और कविता ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लिया है और दोनों चाहते हैं कि वो शादी के खूबसूरत बंधन में कविता के माता पिता के आशीर्वाद से बंधें।
अच्छा सुनो कविता।
हाँ।
मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी पुराने रीति रिवाजों के साथ तुम्हारे गाँव में ही हो।
सच राजेश?
हाँ कविता, अब मेरा अपना परिवार तो है नहीं, गाँव में तुम्हारा परिवार होगा तो मुझे भी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होगी।
ओ राजेश, मम्मी पापा ही सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे।
बस कविता, अब तो उन्हीं का इंतजार है।
हाँ, मुझे भी।
अंजलि, कविता को तो अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन क्या चंदर भी अपनी मंजिल इतनी आसानी से पालेगा?
नरेन, बहुत दुख की बात है कि चंदर एक बार फिर उमेश के बहकावे में आ जाता है, लेकिन गजेंद्र दोस्ती का फर्ज निभाता है और चंदर को एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा देता है। पर एक दिन मुंबई में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी के विज्ञापन को देखकर चंदर फिर से बहक जाता है और गजेंद्र को जबरदस्ती मुंबई ले आता है।
इस शहर के हैं नए नए से अपने रास्ते, सपने सच हो यहाँ अगर किस्मत साथ दे, बस थोड़ी हिम्मत यहाँ फिर ऐसी जन्नत कहाँ। मुंबई नगरिया, मुंबई नगरिया, सलाम टू मुंबई, ये सलाम टू मुंबई।
ये आ गई अपने सपनों की नगरी मुंबई।
दोस्तों, जहां चंदर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मुंबई आ जाता है, वहीं उसका बड़ा भाई गांव में अपने किए पर पछताता है और मीरा से अपने किए की माफी मांगता है।
हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मेरा अब क्या होगा?
अरे क्या हुआ आपको?
मुझे माफ कर दो मीरा।
अरे नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, और वैसे भी आपकी इन गलतियों की वजह से मुझे कम आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। अब बस ये डॉक्टर की दवाइयाँ खाने में आनाकानी मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
ये सब कुछ मेरे पीने की आदत की वजह से हुआ है मीरा, मैं कसम खाता हूँ मैं आज से और अभी से पीना छोड़ दूंगा। ये सारी बोतलें, इन बोतलों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम इन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। शायद ये दिवाली मेरी जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा लेकर आएगी।
नरेन, मीरा की जिंदगी में तो खुशियाँ एक बार फिर लौट आई हैं, लेकिन क्या मधु अपनी मंजिल को पा सकेगी? आत्मनिर्भर बनने के बाद वो अपनी पढ़ाई एक बार फिर शुरू कर देती है और इम्तिहान की तैयारी में दिन रात एक कर देती है।
तुम अभी तक जाग रही हो, पता है कितना वक्त हुआ है?
दीदी, परीक्षाएं आने वाली है ना, उन्हीं की तैयारी कर रही थी।
अरे तो दिन में भी तो तैयारी कर सकती हो, इतनी रात को दिए की रोशनी में पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा।
अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी दिन में घर का काम भी तो होता है।
मधु, तेरी लगन देखकर मुझे पूरा यकीन है, तू जरूर अच्छे नंबरों से पास होगी।
दोस्तों, उधर गांव में मधु की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है और इधर मुंबई में चंदर की जिंदगी में संघर्ष जारी है। जब चंदर और गजेंद्र प्लेसमेंट ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें नई परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बहुत कम है
जी।
अरे भाई, तुम दोनों की क्वालिफिकेशन बहुत कम है।
लेकिन आपने अखबार में तो यही विज्ञापन दिया था, योग्यता से 10वीं पास चाहिए,
और मेरी तो आपसे फोन पर भी बात हुई थी।
अच्छा ऐसा है। देखो भाई, अब हम तुम्हारे दसवीं पास होने की योग्यता को चला भी लें, लेकिन अंग्रेजी के बिना बात नहीं बने।
आप कैसे भी करके कुछ कीजिए ना।
तो ठीक है, निकालो 3200 रुपए।
3200 रुपए?
हाँ भाई, 1600 तुम्हारे और 1600 इनके। अब अंग्रेजी मुफ्त में तो नहीं आएगी ना, उसके लिए तो पैसे लगते हैं।
नरेन, जहाँ चंदर की जिंदगी में संघर्ष जारी है, वहीं कविता अपनी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी है। कविता के माता पिता ने राजेश को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए गांव जाने वाले हैं।
बेटा, तुम मेरी और कविता की माँ की परसों की टिकट बुक करवा दो।
ठीक है पिताजी, लेकिन आप शादी की तैयारियों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं और कविता वहाँ शादी से कुछ दिन पहले ही आ जाएंगे और सारा काम संभाल लेंगे।
ये तो पहली बार होगा हमारे गांव में कि बेटी और दामाद ने खुद शादी की तैयारियां की हो।
पिताजी।
ठीक है बेटा, तुम आकर तैयारियां कर लेना।
चलो अंजलि, ये तो अच्छा हुआ कि कविता की जिंदगी में खुशियां एक बार फिर लौट आईं। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे हरिंदर के साथ। वो कहते हैं ना अंजलि, जब जागो तभी सवेरा। हरिंदर ने खुद को बदलने की ऐसी ठानी कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा।
सर, आपने मुझे बुलाया।
हाँ हरिंदर, ये लो तुम्हारा इस महीने का तनखा। अब 5000 है, गिनो।
सर, आपने गिनकर ही दिए होंगे।
हरिंदर, मैं तुम्हारा काम से बहुत खुश। और सिर्फ मैं नहीं, ये टूरिस्ट भी जाते वक्त तुम्हारा बहुत तारीफ करते हैं।
सर, खुशी की बात तो मेरे लिए है कि आपने मुझे अपने यहाँ काम करने का मौका दिया।
आइयो।
और अपने टूरिस्टों का ख्याल रखना तो मेरा काम है सर।
वेरी गुड अरिंदर, वेरी गुड।
काश नरेन चंदर भी अपनी गलतियों से सीखता। दयाल पांडे चंदर और गजेंद्र से नए नए तरीकों से पैसा ऐंठता रहा। आखिर में जब दयाल पांडे की सच्चाई सामने आई, तब गजेंद्र खुद को रोक न सका।
गज्जू क्या कर रहा है? छोड़ मुझे यार, छोड़। मुझे पता था चंदर अभी पैसे बनाने के लिए चार बहाने और बताएगा। चल पैसे निकाल, हमारे सारे पैसे निकाल। गज्जू देख, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। छोड़ मुझे गज्जू, छोड़ दे इसे। अरे छोड़ दे, छोड़ चंदर, छोड़ यार। अरे चंदर, गज्जू रहने दे। गज्जू,
चंदर, मैंने तुझसे पहले ही बोला था ना, ये आदमी सही नहीं है, ये हमें पागल बना रहा है। हमसे अलग अलग तरीकों से पैसे ऐंठ रहा है। कभी अंग्रेजी सीखो, कभी तैरना सीखो, और अब नया ये शगुफा मेडिकल चेकअप। मैं तुझे
सर, देखिए सर, सर हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं। ये नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है सर।
नौकरी? देखो सर, लोगों को नौकरी नहीं, लाते मिलती है, लाते। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ।
दोस्तों, जहां चंदर अपने पूरे सफर के दौरान खाली हाथ खड़ा है, वहीं मधु अपनी समझदारी से पूरे परिवार का दिल जीत लेती है।
मधु, मुझे माफ कर दे मधु, मैंने तुझे गलत समझा, मुझसे गलती हो गई है मधु। मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तू भी मुझे मार मधु। हाँ मार मुझे।
नहीं नहीं माँ जी, नहीं, क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही है? आप तो मेरी माँ है ना।
हाँ, मगर माँ होने का ये मतलब तो नहीं ना कि मुझे तुझ पर हाथ उठाने का हक है।
माँ जी, आप रोशन को बहुत चाहती है ना, इसलिए सब कुछ हुआ है। और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है ना
मधु।
माँ जी।
तो आखिरकार नरेन मधु की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और चंदर ने अपनी गलतियों से ही सीख ली। वो नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए राजेश और कविता के साथ वापस दिल्ली आ जाता है, जहां उसे पुराने रेस्टोरेंट में नौकरी मिल जाती है। और चंदर गांव जाते वक्त गजेंद्र से वादा करता है कि जल्द ही वो मधु को अपने साथ लेकर शहर आएगा और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा।
पता है चंदर, इंसान बिल्कुल हिरण की तरह है, जैसे हिरण को मालूम नहीं होता ना कि कस्तूरी उसके अंदर छुपी है और वो जंगल जंगल कस्तूरी की खुशबू में भटकता रहता है। बिल्कुल इंसान भी उसी की तरह है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुझे तेरी गलतियों से सबक मिल गया होगा और तू ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा।
अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने तो सोच लिया है कि इस बार जब आऊंगा तो मधु को भी अपने साथ लेकर आऊंगा और उसके साथ बीती सारी बातें भुलाकर जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करूंगा।
ये तूने बहुत अच्छा सोचा। अरे चंदर बस आ गई।
हाँ चल चल चल,
सामान उठा यार, ये ला, पकड़ पकड़ अपना बैग, जल्दी जल्दी
पकड़, चल 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 जा, चढ़ जा चढ़ जा। दोस्तों गांव में खुशियों भरा माहौल है। कविता और राजेश की शादी है, हरेंद्र की नौकरी अच्छी चल रही है और मधु भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है। चंदर और कविता के प्रवास का सफर जितना कठिन था उतना ही कठिन गांव में मधु और हरेंद्र का सफर भी रहा। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।
चाहे जितना घमंड अंधेरे करे, एक किरण तोड़ देती है ये गुरूर। ढूंढना होगा गम के रस्तों में छुप के बैठी कहीं खुशी जरूर।
तो दोस्तों जब चलें शहर की ओर के सीजन एक का सफर यहीं आकर थमता है।
लेकिन इस सफर के दौरान हमारे श्रोताओं ने अपने खतों और SMS के जरिए जो ढेर सारा प्यार हमें दिया उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे।
इतना ही नहीं दोस्तों, हमें अपना समझने के लिए, हमारे साथ अपने अनुभव बांटने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
अंजलि, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश थी सभी प्रवासी दोस्तों के जीवन को एक सही दिशा देने की, ताकि उनका प्रवास सुखद और आसान हो। और इस कोशिश में हमारे सामुदायिक संवाददाताओं और हमारे कलाकारों ने बखूबी हमारा साथ दिया, जिसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।
इसके अलावा हम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस का भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा।
दोस्तों यही है जब चलें शहर की ओर के सीजन एक का खूबसूरत अंत।
लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने फिर आए नई जानकारियों के साथ, नई कहानी के साथ, जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करे बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी दे।
आपका प्रवास का सफर हमेशा खुशनुमा और सुखद बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अंजलि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
तो हर पल को जी लूं मैं जी भर के और हंस हंस के ये कह दूं दुखों के पत्थर से अलविदा।